वो सिस्टम क्या है, क्या था, समाज तश्कील पाता है फैमिलियों से, खानदानों से, कुंबों से तश्कील पाता है, और कुंबा तश्कील पाता है जनो शौहर से, मियां बीवी से कुंबा शुरू होता है, उसकी फाउंडेशन, उसकी बुनियाद इन्हीं के जरिए होती है, उसके बाद खानदान बढ़ता है, फैलता है, और उन्हीं से जो है समाज बनता है, मुख्तलिफ फैमिलियां, मुख्तलिफ समाज, मुख्तलिफ खानदान के लिए ये देखा इकट्ठा हो जाते हैं, इसी का नाम समाज है, इसी का नाम माशरा है। अगर फैमिली सुधर गई तो समाज सुधर गए, ये नामुमकिन है कि फैमिली जहन्नम का नमूना हो और समाज जन्नत का नमूना बन जाए, ये नहीं हो सकता। लिहाजा अगर हम अपने समाज को जन्नत का नमूना बनाना चाहते हैं, समाज को बहिश्ती समाज बनाना चाहते हैं, तो पहली जिम्मेदारी यह है कि हम अपने खानदान को, अपने कुनबे को, अपनी फैमिली को बहिश्ती का नमूना बना दें। जब यह खानदान यानी कुनबे, ये फैमिलियां बहिश्ती खानदान बन जाएंगे, समाज को बहुत बहिश्ती समाज बन जाएगा। किस तरह से समाज बहिश्ती समाज बन सकता है, अर्ज किया था इस सिलसिले में, तो पहला मरहला यह होता है जिस पर कुनबे की बुनियाद रखी जा रही होती है। कुनबे की बुनियाद क्या है, शादी है। उस वक्त जब रिश्ता चुना जाता है लड़के के लिए लड़की, लड़की के लिए लड़के, वहां पर किस चीज को मेयार करार देना है, तफसील से रख चुका हूं कि वहां पर मेयार दौलत नहीं है, मनसब नहीं है, ओहदा नहीं है, आपका सोशल स्टेटस नहीं है, इनकम नहीं है, बल्कि मेयार दीन है, मेयार अखलाक है, मेयार अक्ल है। कुरान ने, अहादीस से पैगंबर ने, इरशादात मासूमी अलैहिस्सलाम ने जो हमें तालीम दी है वो यही तालीम दी है कि जब भी किसी रिश्ते को इंतखाब करना हो तो तीन चीजों को निगाहों में रखना, सलामत दीन, सलामत अखलाक, सलामत अक्ल, तीन चीजों को जहन में रखना। उसके बाद रिश्ते के इंतखाब के बाद शादी किस तरह से अंजाम दी जाए, महर क्या हो, जहेज क्या हो, बारात क्या हो, इन सब को मैंने असिया इस्लाम की निगाह में निहायत सादगी से ये सारी चीजें अंजाम पानी चाहिए। शादी इस्लाम में सबसे आसान काम शादी है, जो हमारे समाज में सबसे मुश्किल बन गई। कहीं पर लड़कों के लिए परेशानियां हैं, कहीं पर लड़कियों के लिए परेशानियां हैं, लेकिन इस्लामी शादी, इस्लाम में जो मियाद मुकर्र किया, जिसको मैं आपके खिदमत में पेश कर चुका, इंतहाई सादगी है, सबसे आसान काम शादी कर देना है, कोई खर्ची नहीं, इस्लामी शादी। शादी के बाद अब जब जिंदगी का आगाज हो रहा है तो जिंदगी को किस तरीके से हम, किस तरीके से एक दूसरे के साथ जिंदगी बसर करें कि जिस खानदान, ये कुनबा एक बाबरकत कुनबा करार पाए, बहिश्ती खानदान बन जाए। अर्ज किया था कि खुदावंद आलम ने आईनी जिंदगी की बुनियाद मोहब्बत पर रखी है, वजाला बैनकुम मवद्दतम व रहमा, आईनी जिंदगी की बुनियाद हुकूक और फराइज पे नहीं है, किसके चक्कर में पड़े रहेंगे, किसका हक क्या है, किस पर फर्ज क्या है। असल बुनियाद जो है वो बुनियाद मोहब्बत की है, फराइज और हुकूक के बहस वहां छड़ती है जहां मोहब्बत नहीं होती, लेकिन जहां मोहब्बत हो जाती है वहां ये कोई नहीं देखता है उनका फरीजा क्या है, हमारा फरीजा क्या है, इस इंतजार में कोई नहीं बैठा रहता है। अल्लाह का ये करम है कि जहाला बैनकुम मवद्दतम व रहमा, दो अजनबी लड़के लड़की जैसे ही अक्ल होता है, शादी होती है, एक दूसरे के कई उनके अंदर मोहब्बत का जज्बा पैदा हो जाता है। मोहब्बत अल्लाह ने कायम कर दी, बरकरार, जैसे अल्लाह की सारी नेमतें हैं, नेमतें अल्लाह ने दे दी, नेमतें सलामत दिया, नेमतें दौलत दिया, नेमतें अक्ल दिया, देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिया, ये सारी नेमतें हैं ना अल्लाह की, दे अल्लाह ने दिया, हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है, मोहब्बत अल्लाह ने कायम कर दी, मोहब्बत को बाकी रखना हमारी जिम्मेदारी। किस तरह से मोहब्बत बाकी रखी जा सकती है, इस्लाम ने यहां पर भी हमारी रहनुमाई की है। इस्लाम को जामे कामिल और मुकम्मल दीन है, उसने जिंदगी का कोई गोशा रहनुमाई के बगैर छोड़ा नहीं है। यह और बात है कि हमें खबर ना हो, हम ना वाकिफ है, हम ना आता है। अभी मैं अर्ज करूंगा बातों को, देखेंगे कि कितनी छोटी छोटी बातें जो बहुत बड़ी बातें, कभी कभी बात बड़ी छोटी होती है मगर उसकी अहमियत बहुत ज्यादा होती है। इस्लाम ने हर मोड़ पर हमारी जो है रहनुमाई की है, कैसे यह मोहब्बत बाकी रखी जा सकती है कि शादी के बाद भी यह मोहब्बत चंद दिनों में या चंद महीनों में खत्म न हो जाए, बल्कि अनकहतों से अगर इसका सिलसिला शुरू हुआ था तो कब्र की मंजिलों तक यह सिलसिला मोहब्बत बाकी रह जाए। कल मैंने एक चीज पेश की थी, अगर मोहब्बत को बाकी रखना है तो शादी के बाद खिदमत करने का जज्बा हो, खिदमत लेने का जज्बा न हो। सारे झगड़े सारे खिलाफात वहीं से शुरू होते हैं कि जब इंसान खिदमत लेना चाहता है, खिदमत करना नहीं चाहता। कैसे ये काम हो सकता है, इसको आगे खिदमत में पेश कर चुका, अब गुफ्तगू को आगे बढ़ा। दूसरी चीज, जिस चीज के ऊपर तवज्जो रखना है, जो मोहब्बत अल्लाह ने कायम की थी मियां और बीवी के दरमियान, मोहब्बत बाकी रह जाए, उसमें एक अहम चीज जो है अहम किरदार अदा करती है वो ये है कि हर उस अमल से परहेज करे जो एक दूसरे को तकलीफ पहुंचा सकती है। शौहर उस अमल से परहेज करे जो बीवी को तकलीफ पहुंचा सकती है, बीवी उस अमल से परहेज करे जिससे शौहर को तकलीफ पहुंच सकती है। हम और फर्ज को ना देखें, यानी कि शौहर के लिए जिम्मेदारी है उसके निभाएं पूरी करें, वलो इसके निभाने में उनको तकलीफ होती हुआ होती है तो हुआ करे। बीवी की जिम्मेदारी है वो निभाए, चाहे उसे तकलीफ और अजियत होती है। मेरा मसला हुकूक और फराइज घर में अपनी बहस में जाना ही नहीं चाहता हूं, किसका हक क्या है, किस पर फर्ज क्या है, ड्यूटी क्या है। अर्ज किया मैंने, ड्यूटी और हक की बात वहां आती है जहां मोहब्बत नहीं होती है। जहां मोहब्बत होती है वहां ड्यूटी और हक की बात ही नहीं होती है। तो जो चीज मोहब्बत को बाकी रह सकती है वो ये है कि एक दूसरे को तकलीफ ना पहुंचाए, न शौहर बीवी को तकलीफ पहुंचाए, न बीवी शौहर को तकलीफ पहुंचाए। हर उस अमल से परहेज करें जिससे दूसरे को तकलीफ पहुंच सकती है। अब हदीस सुनिए, यहां तक तो मेरी बात होगी। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक दूसरे को तकलीफ ना पहुंचाए फरमाते हैं, क्या अजाब है एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने का, क्या गुनाह है एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने का। बोलो पैगंबर फरमाते हैं, मन कालत लहू इमरातुन तुज़ी, अगर किसी की बीवी जो है अपने शौहर को तकलीफ पहुंचाती है, अजियत देती है, मतलब दोनों के लिए अजीज है, दोनों को अर्ज करूंगा, बीवी के लिए भी है शौहर के लिए भी, मन कालत लहू इमरातुन तुज़ी, जिसकी बीवी उसे अजियत देती हो, तकलीफ सबको तो अच्छे पैकेज वाली जॉब ही नहीं मिल जाती है। किसी की आमदनी 100 दिनार की है, किसी की आमदनी 500 दिनार की है, किसी की आमदनी 1000 दिनार की, किसी की आमदनी 5000 दिनार की। एक बहन की शादी उसके साथ हो गई है जिसकी आमदनी 100 दिनार की है, दूसरी को किस्मत में वो मिल गया जिसकी आमदनी 5000 दिनार की है।
وعتقد الرقاب عن فقد الاموال في سبيل
تقدیر اللہ، یہ عورت جو اپنے شوہر کو اذیت دیتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، چاہے یہ زندگی ہر روزہ رکھا کرے، جب تک زندہ ہے جب وہ روز نماز پڑھتی رہے، غلاموں کو آزاد کرے، راہ خدا میں ایمان خرچ کرے، امام بڑا بنوا رہی ہے، مسجدیں بنوا رہی ہے، یتیموں کی خبر بھی نہیں، بیواؤں کی خبر پڑتی، لیکن اگر شوہر ناراض ہے، اگر شوہر کو تکلیف پہنچائی ہے، شوہر کو اگر اذیت دی ہے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں پیغمبر ثم قال رسول اللہ وكذلك الرجل وكذلك على الرجل، صرف عورت کے لیے نہیں، یہ بیوی اگر شوہر کو تکلیف پہنچائے تو اس کے لیے یہ عذاب ہے، اس کی کوئی نماز قبول نہیں، کوئی عمل قبول نہیں، شوہر کے لیے کھلی چھوٹ ہے، کتنا چاہے بیوی کو ستاتا رہے. شوہر نے اپنی بیوی کو تکلیف پہنچائی ہے، تکلیف پہنچانے کا مراد مارنا ہی نہیں ہوتا. بات کو سمجھتے ہیں ہم نے کہا تکلیف پہنچائی، آج تک میں نے ہاتھ اٹھایا ڈنڈا کر اٹھایا ہم نے نہیں. ڈنڈے سے بڑا زخم جو ہوتا ہے یہ زبان کا زخم ہوتا ہے. ایک تم کھانا پکاتی ہے، وہ کھانا پکاتی ہے، ان کا رہنے کا ان کا گھر جانے کا وہ کتنا صاف ستھرا رہتا ہے، تمہارا گھر دیکھو کیسا ہے. یہ تانے تائی سے بات دیتا ہے، کوئی اذیت دیتا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ رشتہ محبت جو ہے آئینے محبت پر باہر آ جائے گا، درار پڑ جائے گی. اگر درار پڑ گئی تو پھر وہ قانون اور حق اور فرائض کے بندروں میں بند نہیں رہیں گے، کہیں نہ کہیں سے لوگ کرم دوشا نکال ہی دیتے ہیں. تو پہلی چیز یہ عرض کیا تھا کہ ایک دوسرے کی خدمت کریں، خدمت لینے کا جذبہ نہ ہو. دوسری بات ہر اس چیز سے پرہیز کریں، گریز کریں جس سے ایک دوسرے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. دوسرا مسئلہ اس کی طرح بہت کم دھیان دیا جاتا ہے، شاید بعض لوگ اس کے خلاف تقویٰ بھی سمجھتے ہیں، بہت اہم ہے، وہ یہ ہے. اگر آہستہ آہستہ شادی کے کچھ دنوں کے بعد میاں بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے عادی ہوتے جاتے ہیں، دلچسپی ختم ہونے لگتی ہے، کشش ختم ہونے لگتی ہے، گھر کے اندر کشش کے بجائے باہر کشش ہونے لگتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ شوہر گھر سے باہر گیا، آفس میں پہنچے، ماں بہن حال کچھ ہیں جو ان کے ساتھ کام کرنے والی ہیں. آفس میں جو خواتین آتی ہیں وہ سر شور بھی آتی ہیں نا، فیشن شو میں جا رہی ہے یا جاب میں جا رہی ہے، سب بھی معلوم ہو پاتا ہے. آفس میں جو سامنے ملی سجی سمری باخلا لڑتا ہے وہاں کوئی، اگر کوئی بات ہو رہی ہے تو یہ جو ہے فوراً جو ہے معافی مانگنی چاہیے، سوری کرنے کو تیار. تو گھر میں کوئی نہیں معافی مانگنے کو تیار ہوتا ہے نا، وہاں اخلاق کا مجسمہ جو خاتون وہاں نظر آ رہی ہیں انہیں. اب تک ایمان حضرت یوسف تو کسی کے پاس نہیں نہ ہے، زلیخا کو دیکھ لیا اور کوئی اثر نہ ہو، ایمان یوسف تو نہیں نہ ہے ہمارے پاس، عام انسان ہے نا. وہاں پہ دیکھ رہے ہیں سجی سمری، سینٹ کی خوشبو آ رہی ہے، عطر کی خوشبو آ رہی ہے، اخلاق بھی اچھا، گھر میں جو واپس آئے، گھر میں جو بیوی سامنے آئی، لہسن پیاز کی بدبو آ رہی ہے،
होता है कि ना भाई। उसके बाद घर में आने के बाद हंसी अलग से, अरे फला चीज नहीं लाए ढेकर, तुमको हमेशा भूल जाते हो। तुम्हें तो कभी यकीन नहीं रहता कि घर का तैयार नहीं रहता है। अखलाक जबान के लिहाज से हंसी अलग, जाहिर शक्लो सूरत खूब अलग, दाहिने वाले जीने अंदाज होती है, ना जानी हम पे तो असर नहीं पड़ता है। मजाक मत करे, मजाक बिल्कुल उल्टा जो हम लोग करते हैं। बाबा तो कोट वगैरह थ्री पीस सूट टाई लगे हुए और छिड़के हुए बालों को सजाए हुए, जरा थोड़ी देर के लिए अगर बाल खराब हुआ फौरन आईने के आगे आगे क्यों ऑफिस में बैठना है, फला देना जाना, बिल्कुल सजा था मेरे घर आए नहीं, सारे कपड़े उतार करके सबसे गंदा कपड़ा पहन के बैठे, ये होता है ना। सबसे खराब कपड़ा घर में, सबसे अच्छा कपड़ा बाहर, यही मर्द भी करते हैं, औरतें भी करती हैं। सबसे दिलचस्पी को बरकरार रखना है, जो पहले दिन मोहब्बत की शादी के वही मोहब्बत अगर बरकरार रखना है वही हरारत में इश्क अगर बाकी रखना है तो शौहर की जिम्मेदारी है कि बीवी के लिए आरास्ता करे, बीवी की जिम्मेदारी है कि शौहर के लिए आरास्ता करे। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि हो जल्दी से घर पहुंचे, कब छुट्टी हो जल्दी से घर पहुंचे, होगा या नहीं होगा। कहा गया है कि जब शौहर आने वाला है उस वक्त अपने को बिल्कुल तमाम हम्मो गम्मो फिक्र से अपने को पाक व पाकीज़ा रखो। थका माना शौहर आ रहा है उसके इस दरबार की तैयारी करो। जब शौहर आए दरवाजे पर उसको खैर मकदम करो, फौरन घर का दुफला लेकर न बैठ जाओ। अबू अय्यूब अंसारी, अबू अय्यूब अंसारी रसूल के सहाबी हैं, उनके एक ही बेटा था। बच्चा बीमार, सुनिए गौर से सुनिए, खासतौर से खवातीन सुने, उनका एक ही बेटा बीमार। अब वो ये अंसारी अपने काम काज से घर से बाहर गए। दोपहर होते होते बच्चे की बीमारी ने शिद्दत इख्तियार किया, बच्चा मर गया। एक मां के लिए बच्चे की मौत से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं, बच्चा मर गया। मां है रोई हुई। उसके बाद शाम में होने लगी, शौहर के आने का वक्त हुआ। फौरन सोचा कि शौहर मेरा सुबह से निकला हुआ है, शाम को भूखा प्यासा आएगा, जनाजा देखेगा तो बेचारा खाना पीना भी खाना मिल जाएगा, जाने का उसे खाना में असर हो। जनाजे को उठा करके दूसरे कमरे में जाकर रख दिया, चादर डाल दिया उसके ऊपर। शौहर के आने का वक्त जब हुआ तो उस्ताद का हुक्म है, अपने को अरस्ता किया, अपने को तैयार किया, कलेजा देखे मां का। ये मां की औरत नहीं है, ये हजार मर्दों से बड़ी मर्द है। कलेजा देखे मां का। शौहर आए, खंदा निशानी के साथ शौहर का इस्तकबाल किया, दस्तरखान लगा दिया, खाना खाया। जब खाना खा भी चुके तब उन्होंने बीवी ने सवाल किया शौहर से, ये बताइए कि अगर आपको कोई अमानत दे और अमानत देने वाला आपके दरवाजे में आए कि मेरी अमानत वापस करो तो आपको कैसा लगेगा? बोले बहुत अच्छा लगेगा, इससे अच्छी क्या बात है। इसलिए कि अमानत हमने अपने इस्तेमाल जो रखी हुई उसकी अमानत है, हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे साथ। अगर कोई अमानत ले जाए तो हमें मानो एक बोझ से आजाद हो गए। कब आज से इतने साल पहले अल्लाह ने हमें और आपको एक अमानत दी थी, आज अल्लाह ने वो अमानत वापस ले ली है। बच्चे का इंतकाल हो गया, जाइए उस पर वफन का इंतजाम कीजिए। अब वही हो गया, सारे ने बच्चे को दफन किया। दूसरे दिन जब पैगंबर के पास पहुंचते हैं तो पैगंबर फरमाते हैं कि मरहबा मुबारक हो तुम्हें आज की रात, अल्लाह तुम्हें मेमुल बदल अदा करेगा। बेटा मर गया, उसके बाद दोबारा उनको देखा हुआ तो बेटा इतना सईद निकला कि जंगल से لگتا ہے ایک بات یہاں پر عرض کروں، بات یہاں پہ عرض کروں کہ آرائش اور میکپ اسلام میں عورت کے لیے فقط شوہر کے لیے اجازت ہے، نامحرم مردوں کے لیے نہیں، سر جھک کے باہر جانے کے لیے نہیں۔ عورت اگر میکپ کر کے گھر سے نکلتی ہے نامحرم مردوں کی نگاہوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے، ایک دفعہ آرائش کر کے عورتوں کے درمیان جاتی ہے، اس سے بحث نہیں ہے، اگر مردوں کے درمیان جاتی ہے اس پر بھی خدا کی لعنت ہے، اور اگر اس کا شوہر جو ہے دل کا جو وابستہ ہو جانا، یہ ساری مصیبتیں آج کے بعد اور آپ کی نوبتیں کیوں آتی ہیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اگر دھیان دیا جائے، چھوٹی چھوٹی بڑی بڑی باتیں، بظاہر چھوٹی سی بات ہے لیکن درحقیقت اس کے اثرات بہت بڑے ہیں۔ ایک چیز محبت کو باقی رکھ سکتی ہے، وہ ہے آراستہ دینا، آراستی مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی۔ آٹھویں امام امام رضا علیہ السلام نصاب بنی اسرائیل خرجنا من العفاف الى الفجور، یہ حدیثیں آپ لوگوں کو سننے میں نہیں ملتی، ولایت کے بعد کے ممبروں کو اسلام کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مکتب اہل بیت کی طرف لوگ آتے نہیں۔ امام رضا علیہ السلام کو سلام فرماتے کہ لو علم النار بے محاسن کلام، تو لوگ ہمارے پیرو بن جاتے ہیں، اگر ہم سکھاتے ہیں نہیں، ہم بیان نہیں کرتے، تو نہیں معلوم ہوتی آپ کی ہے ہماری، آپ سننا نہیں چاہتے اس لیے ہم نہیں سناتے، جو بھی وجہ ہو جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں ان نساء بنی اسرائیل خرجنا من العفاف الى الفجور، کتنی باریکیاں ہیں ائمہ کے کلام میں، بنی اسرائیل پاکدامنی کو چھوڑ کر کے بد کرداری کا راستہ اپنا لیا تھا، کیوں تجزیہ کیجیے، بہترین ہو گئی، کیوں بہترین ہو گئی؟ بھائی کہہ دینا کافی نہیں ہے، اگر بڑی آسانی سے کہتے نہیں बीमारी बयान कर देने से काम नहीं चलता है, उसका सबब क्या है, उसका इलाज क्या है। इमाम फरमाते हैं बनी इसराइल में ऐसा हुआ, बनी इसराइल में हुआ तो हमारे यहाँ भी होगा, हमें होशियार हो जाना है ना। वो क्यों बीमार हुए, बीमारी के उनके असबाब क्या थे, उनके असबाब को समझ करके हम कोशिश करें ताकि हम बीमार ना होने पाए। फरमाते हैं इमाम इन्ना निसा बनी इसराइल खरजना मिन अल-अफाफ इला अल-फुजूर, बनी इसराइल की औरतों ने पागलदानी को छोड़ करके तेरा रवि बदकारी का रास्ता अपना लिया। वजह क्या थी, फरमाते हैं वमा अखरजहुन्ना इल्ला किल्लतु तहियते अज़वाज जहन्नम, औरतें इसलिए बदकार हो गई कि उनके शोहरों ने अपने को आराफ्ता करना छोड़ दिया, उनके शोहरों ने अपने को आराफ्ता करना छोड़ दिया था। बाहर जाते थे सज धज के, घर में रहते थे बिल्कुल गंदे गलीज बन गए। उसके बाद इमाम फरमाते हैं कि इन्हा तश्तही मा तश्तही मिन्हा, जो चीज तुम औरतों के बारे में चाहते हो वही चीज औरतें भी तुमसे चाहती हैं। अगर तुम्हें सजी समरी औरत अच्छी लगती है, उन्हें भी सजा समरा मर्द अच्छा लगता है। ये तो नहीं हो सकता है कि सारी तवक्को उधर से हो, जो उनसे तवक्को है वही खुद करके दिखाओ। अगर उनसे खिदमत की तवक्को है, उन्हें भी तुमसे खिदमत की तवक्को है। अगर तुम्हें उनसे हुस्न सुलूक की तवक्को है, उन्हें भी तुमसे हुस्न सुलूक की तवक्को है। एक और चीज जो बहुत अहम है, बहुत छोटी सी चीज है, आमतौर से इसको सलात तक्वा समझा जाता है, नहीं नहीं वो नहीं, वो है मोहब्बत का इजहार। जो मोहब्बत अल्लाह ने डाल दी, मोहब्बत है ना, उसको जाहिर भी तो कीजिए कि मोहब्बत है तुमसे। आमतौर से समझा जाता है ये जुमला जो है ये मजहबियों का जुमला है, काफिरों का जुमला है। हम लोगों को नहीं कहना चाहिए, काफिर कहते हैं आई लव यू, काफिर कहते हैं कि आई लव यू, हमें भूल नहीं कहना चाहिए। अरे हदीस मौजूद है, बेशर्मी की बात है, ऐसे थोड़ी कहा जा सकता, क्यों नहीं। पैगंबर इसको मिंबर से बयान कर रहे हैं, इसीलिए मैं भी जो है मिंबर से बयान करूं। साहब ना कहें कि आप मिंबर से ऐसी बातें करते हैं, पैगंबर ने मिंबर से ऐसी ही बात की। مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فضائل مولا تم کے خیال میں فضائل مولا فقط خیبر کو پڑھنا ہے، فضائل مولا فقط خندق میں آپ کے دبل کا سر قتل سر جو ہے قلم کر رہا ہے، یقیناً یہ بہت بڑے فضائل ہیں، ان کو شک و شبہ نہیں ہے، لیکن فضائل یہی نہیں ہیں، اس سے بڑے فضائل ہیں مولا کے تعلیمات، اس کے لیے مولا آئے ہیں، مولا کہے کے لیے آئے ہیں، ہدایت کے لیے آئے ہیں، ہماری سب سے بڑی فضیلت خیبر کے میدان میں سب سنتے ہیں، یہ والی حدیث نہیں سنتے ہیں، خیبر کے میدان میں پیغمبر نے علی کو خطاب کر کے جملہ کہا، اس میں علی کی فضیلت بیان کی، آج اگر میں یہ پوچھوں آپ سے کہ خیبر میں حضرت علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، کوئی کہے گا سب سے بڑی فضیلت ہے پتھر پہ دین کا علم کام دینا، کوئی کہے گا سب سے بڑی فضیلت ہے باغ خیبر کو اکھاڑ لینا، یہی ہوگا نا، کہتے نا پتھر پہ علم، دین کا گاڑا کس نے، برحق سے پہلوان کو پچھاڑا کس نے، اصحاب پیغمبر تو سبھی تھے موجود، بولو بولو تیرے خیبر کو اکھاڑا کس نے، لیکن عزیزو پیغمبر نے جو مولا کی سب سے بڑی فضیلت بیان کی اس میں سے کوئی بھی نہیں، اگرچہ خیبر کو پھاڑنا بہت بڑا کام ہے، مرحب کے پہلوان کو پچھاڑنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، لیکن عزیزو فضیلت صاحب فضیلت کے لحاظ سے ہوتی ہے، صاحب فضیلت کے لحاظ سے فضیلتیں ہوتی ہیں، ایک بچہ پانچ سات سال کا بچہ آ کر کے پانچ منٹ کی تقریر کر دے سب اس کی جو ہے وہ تعریف کریں گے نا، کیا تقریر کی، کیا بچہ تھا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، اگر وہی تقریر میں کر دوں یہاں سے پکڑ کے اتر آؤں میری آپ تعریف کریں گے، ہاں تو کیا ہو گیا بھائی، اس کی وہ تعریف کر رہے تھے، وہ تقریر اس بچے کے لحاظ سے اچھی تھی، آپ کے لحاظ سے نہیں، فضیلت ہدایت کے لیے آیا ہے نا، اللہ نے انہیں ہادی بنا کے بھیجا ہے، اہم مطلب वो सारे सिफात तो ज़िमनी हैं, अगरचे बहुत अहम हैं,
अगरचे बहुत अहम हैं,
उनकी अहमियत कम नहीं है, बहुत अहम है। हमारी सोच से बालाकर है एक इंसान दो उंगलियों से दरे खैबर को उखाड़ दे, ये फजीलत उससे बड़ी फजीलत और है। वो क्या है? उस कारनामे पर फख्र भी नहीं कर रहा है। जिस वक्त अली ने बाबे खैबर को उखाड़ा है, सब अली का कसीदा पढ़ रहे थे। दूसरी दुश्मन मजबूर हो जाते हैं, करे तो क्या करे, कसीदा का अली का पढ़े, क्या शुजा है, क्या पहलवान है, क्या पहलवान है। तो उंगलियों से बाबे खैबर सब अली का कसीदा पढ़ रहे थे, अली खुदा का कसीदा पढ़ रहे थे। कामयाबी यह है कि लोग उससे हिदायत कबूल कर लें। एक टीचर आता है क्लास में पढ़ाने के लिए, मुअल्लिम आता है क्लास में पढ़ाने के लिए। अगर मुअल्लिम वाकई मुخلص है, वो मुअल्लिम नहीं, उसको अपने पैसे से मतलब है, शागिर्द पढ़े ना पढ़ जाए जान ना मिले, हाँ तनख्वाह नहीं है ना, आए अच्छा है आज पढ़ाने। लेकिन जो जो मुخلص उस्ताद होते हैं, मुخلص टीचर होते हैं, उनकी खुशी क्या होती है? जब बच्चे इम्तिहान में पास हो जाते हैं, जब बच्चे अगर बच्चों ने सीखा, चाहे बच्चे उनका कितना ही कसीदा पढ़ा करें। टीचर क्लास में आया, जैसे टीचर ने पढ़ाने, वाह वाह टीचर क्या क्या आपकी आवाज है, क्या आपका पढ़ाने का स्टाइल है, क्या आपकी शक्ल सूरत है, क्या आपकी शेरवानी है, क्या आपकी कोट है, क्या आपकी तहरीर है। सुना, अच्छा थैंक यू, शुक्रिया, बैठो। अब पढ़ाना चाह, फिर बच्चे शुरू हो गए, जैसे आप सर पहुंचाएंगे, बताएंगे ये टीचर चार पांच दस मिनट तो शायद बर्दाश्त करे, उसके बाद बर्दाश्त करेगा, उसके बाद बर्दाश्त करेगा नहीं। जिस काम के लिए हम आए हैं उसे पहले सुनो। अहले बैत का कसीदा पढ़ना, उनके फज़ाइल बयान करना, ये तो शराफत इंसानी की दलील है, ये तो होना ही चाहिए, मगर ये काफी नहीं है। तुमने क्या सीखा है उनसे? उन्होंने हमें सिखाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। उन्हें हमें सिखाने की इतना, उन्हें हमें सिखाने का इतना शौक था कि जब वो ये देखते थे कि ये शागिर्द सुनने को तैयार नहीं है, ये शागिर्द समझने को तैयार नहीं है, ये हिदायत देने को तैयार नहीं है, तो उनके कलेजे से आह निकल जाती थी। मर्सिया पढ़ते थे, सुब्बत अलैया मुसाइरुन लवन्ना, अगर फातिमा जहरा बाप की कब्र से लिपट करके ये मर्सिया पढ़ रही थी कि सुब्बत अलैया मुसाइरुन लवन्ना, सुब्बत अलैया मुसिरना लयाहलिया, ए बाबा आपके बाद हम पे ऐसी मुसीबत पड़ी है, अगर दिन में पड़ती तो
बेटी को बाप ने आंसू बहाने से भी रोक दिया गया, सबसे
اجرکم اللہ اجرکم اللہ
جان دینا آسان.
فاطمہ زہرا جنودی بار کے درمیان پس گئی بہت بڑی مصیبت ہے. محسن پتن مادر میں شہید ہو گئے بہت بڑی مصیبت ہے جو فاطمہ نے برداشت کی. لیکن جو مصیبت دے کر نے برداشت کی ہے بارے اللہ وابستہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرما، جو مقبوض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما،
Save. 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 Save.